प्यारा।
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहतार, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
ओम शांति। वास्तव में तो आप सबका साथी बन करके इस भट्टी के अंदर आना चाहिए, परंतु इतना वो हमारा सौभाग्य नहीं है कि यहाँ पर भट्टी के अंदर आकर के भट्टी के द्वारा अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, आप जैसे श्रेष्ठ बना रहे हो ऐसा पुरुषार्थ करें। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल के अंदर हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने हमको एक कहा था कि अभी जो भी करना है वो आप अभी कर लो, आप बड़े हो जाएंगे ना उसके बाद आप औरों के सबके लिए टाइम दे सकेंगे, परंतु अपने लिए टाइम नहीं दे सकेंगे। अभी आपके पास फुर्सत है, आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हो, आपको जो करना चाहे जो बनना चाहिए वो अभी आप कर सकते हो, परंतु बाद में आगे चल करके यह कार्य अर्थात अपने आप के ऊपर कार्य अर्थात अपने आप के ऊपर समय देना बहुत कठिन हो जाएगा। और अभी हम यही देख रहे हैं कि यज्ञ के कारोबार के अंदर ईश्वरीय सेवा अर्थ इतना समय देना पड़ता है कि जिसके आधार पर हम अपने ही ऊपर जितना होना चाहिए जितना देना चाहिए इतना कार्य कारोबार में समय नहीं देते हैं, इसलिए क्या करते हैं अपना पुरुषार्थ जो भी है इस प्रकार से ऐसे आप सबसे मिलकर के ऐसे क्लासेस आदि के द्वारा या ज्ञानामृत के द्वारा अपने विचार सागर मंथन करके अपने आप को इस प्रकार से इस ईश्वरीय रास्ते पर चलने चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आपके माफी की एक पुरुषार्थी हूँ और यही लक्ष्य रख करके ये विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ कि हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, और उसमें भी ये जो संगम का समय जो है इस संगम के समय को हम सफल करें, और उसके ही अंदर यह विश्वविद्यालय की जो खूबियां है जो महानता है उस महानता को विश्व के सामने प्रसिद्ध करें। क्योंकि बाबा की सभी बातें निराली है, अनन्य है, और जो निराली बातें जो है बाबा की, बाबा ने बहुत से नए नए कंसेप्ट हम बच्चों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है जो दुनिया के दृष्टिकोण से दुनिया की मान्यताओं से भिन्न है, और इस दुनिया की मान्यताओं से भिन्न ऐसा जो है अपना ये जो डिवाइन फैमिली दैवी परिवार दैवी परिवार का जो सिद्धांत है जो बाबा ने हम बच्चों के सामने रखा हुआ है, और सिद्धांत के आधार पर आदर्श गृहस्थ व्यवहार का कारोबार और उसका लक्ष्य जो रखा हुआ है, मैं समझता हूँ शास्त्रों के अंदर या दुनिया के अन्य कोई भी धर्मों के अंदर भी यह कंसेप्ट डिवाइन फैमिली का नहीं है। दुनिया में तो आप जानते हैं शास्त्रों के अंदर आज से 1500-1600 साल पहले एक गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले मंडन मिश्र थे, उनका और सन्यास धर्म की स्थापना के ऊपर और उसका इम्पोर्टेंस उसकी महानता बढ़ाने के लिए निमित्त बने हुए शंकराचार्य, उसके बीच में डिबेट हुई थी, चर्चा हुई थी कि कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, और शंकराचार्य के उस पवित्र पुरुषार्थ के आधार पर मंडन मिश्र का जो जीत हार हुई और शंकराचार्य की जीत हुई, और परिणाम रूप जो है मंडन मिश्र ने भी गृहस्थ आश्रम छोड़ करके अपना पारिवारिक जीवन छोड़ करके इन्होंने भी सन्यास जीवन धारण कर लिया, और तब से सन्यास जो है और सन्यासी जीवन जो है सन्यास आश्रम जो है वही जीवन का लक्ष्य बन गया। दुनिया के कई धर्म इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर बने हुए हैं, जिस धर्म के अंदर घर बार का त्याग करना बहुत जरूरी है, माना गया है। और अगर जैन धर्म ऐसा है, उस धर्म के अंदर तो ऐसा ही है कि आपको इस मनुष्य जीवन को, मनुष्य आपका जो जन्म है उसको सफल करना है, और आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति अगर चाहिए तो आपको आपका गृहस्थ जीवन जो है, आपकी जो पारिवारिक जीवन जो है, आपका फैमिली लाइफ है, उसका त्याग करना ही पड़ेगा। और अगर त्याग नहीं किया तो आपको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, और फिर से ही संन्यास के बदले में गृहस्थ जीवन में रह करके शरीर छोड़ने के कारण आपको फिर से नया जन्म लेना ही पड़ेगा। ऐसी एक कल्पना जो है सिद्धांत के रूप में जैन धर्म में रखी हुई है। मेरा एक मित्र है, उसका पिताजी जो है 72-73 वर्ष की उम्र में जैन सन्यासी बने, तो उनका जो सन्यास धारण करने का प्रोग्राम था, महोत्सव बना हुआ था, उसके अंदर मैं गया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा भी सही कि आप ये 73 वर्ष की उम्र में आप ये गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यास जीवन धारण करते हो, उसका फायदा क्या? तो कहा कि हमारे गुरुजी जो है उन्होंने हमको कहा हुआ है कि हमारे धर्म का लक्ष्य ही है कि गृहस्थ जीवन में अगर रहे, आप फैमिली लाइफ में अगर रहे, पारिवारिक जीवन में रहे, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और आपको फिर से नया जन्म लेने के लिए मनुष्य जीवन में ही आना पड़ेगा। इसलिए मुझे मुक्ति या तो जीवन मुक्ति चाहिए, उसके लिए ही मैंने एक गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास जीवन का धारण करने का प्रयत्न किया हुआ है। हम सब गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैन धर्म के ही एक बहुत प्रसिद्ध मुनि हो गए कांजी महाराज करके, शायद आप में से जो जैन धर्म को जानते होंगे उनका मालूम होगा, कांजी महाराज करके गुजरात में हो गए, सोनगढ़ के पास में उनका आश्रम अभी भी चल रहा है। इन्होंने बॉम्बे में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया, और इसमें नक्की किया कि जो बहुत बड़ा फंक्शन, महाराष्ट्र का गवर्नर आदि सब उसमें आए हुए थे, और जो भी फंक्शन के अंदर इन्हों का बहुमान किया, इन्हों को इंद्र के रूप में, इंद्र और इंद्राणी के रूप में, हाथी के अंबाड़ी के ऊपर, हाथी के ऊपर बिठा करके उनका स्वागत किया, जुलूस निकाला, काफी बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मुझे भी निमंत्रण मिला हुआ था, तो मैं गया उधर। मैंने कहा कि ये किस चीज का फंक्शन है, तो बताया कि 12 युगल ऐसे थे, 12 युगल इन्होंने उस धर्म के अंदर जो है उसमें पवित्रता का बंधन लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो उसको बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो वो 12 युगल जो है उनका इंद्र और इंद्राणी के रूप में हाथी के अंबाड़ी के ऊपर बैठा करके, मतलब उस प्रकार से जुलूस लिया गया, किया गया था, और फंक्शन रखा था, महाराष्ट्र का गवर्नर भी उसमें आया हुआ था, और उसके अंदर कांजी महाराज ने बताया कि हमारे ये 12 युगल है, ये श्रेष्ठ युगल है, जिन्होंने आज से वायदा किया हुआ है कि हम पवित्र रहेंगे और पवित्र रह करके अपना जीवन व्यवहार व्यतीत करेंगे। तो आप जानते हैं, बहन जी ने तो आपको नहीं बताया, पर मेरा व्यवसाय वकील का है, और वकीलों की बुद्धि जरा टेढ़ी चलती है, क्योंकि वकीलों की जीभ में हड्डी नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि यही तो 12 ऐसे परिवार वाले हैं, पवित्र रहने का प्रण लिया और वचन ले रहे हैं सबके सामने, तो जाकर के मैं उनके जीवन को देखूं तो सही, कौन है, कैसे हैं, जो इस प्रकार से पवित्र रहने का दृढ़ निश्चय करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो मैं गया उधर, फंक्शन में गया, तो मैंने जाकर के देखा वो 12 व्यक्तियों के बारे में, उनकी बायोग्राफी जो है वो भी एक फोल्डर किताब के रूप में छपी हुई थी, हर एक का जीवन चरित्र था। तो मैंने सबका जीवन चरित्र भी देखा, पढ़ा, सबके जीवन के अंदर का अनुभव हमने यही पढ़ा कि 12 ही युगल जो थे, माने 24 जो थे, वो 12 ही युगल जो है दादा दादी या नाना नानी बन गए थे। आप समझे, 12 युगल जो है वो पवित्र रहने के पहले नाना नानी या दादा दादी बन गए थे, और उसके बाद जो है जिसे वो हमारे गुजराती में कहावत है कि सो चूहे मार करके बिल्ली जो है यात्रा करने को जाती है, तो ऐसे ही मतलब वो थे 12 युगल, और वो पवित्रता का प्रतिज्ञा लेकर के उनकी वो गांधी महाराज ने महिमा किया था अखबारों में, एक पेज की फुल सप्लीमेंट दिया था, सबके फोटोग्राफ दिए 12 युगलों के, कि देखिए ये कितने श्रेष्ठ जीवन है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्रता का कंगन बांध करके अब से पवित्र जीवन पवित्र गृहस्थ व्यवहार का कारोबार करेंगे। तो मुझे लगा कि देखिए कितनी छोटी बात है, और कितनी छोटी बात को इतना पवित्रता की छोटी बात हमारे यज्ञ में तो मिनिमम है। ब्रह्मा बाबा के पास जो है महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके चेयरमैन थे वीएस पागे करके, भ्राता वीएस पागे, जिसको मैंने 7 दिन का कोर्स कराया था, और महाराष्ट्र के अंदर जो ज्ञानेश्वरी गीता है वो ज्ञानेश्वरी गीता के वो प्रखर पंडित थे, ब्रह्मा बाबा को मिलने के लिए भी आए हुए थे। तो बाबा ने उनसे पूछा वीएस पागे को कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहा मेरी उम्र 56 वर्ष की है। ब्रह्मा बाबा साकार बाबा की बात करता हूं, 1963-64 की शायद बात है। तो बाबा ने कहा कि कितनी उम्र है, तो कहा 56 वर्ष है। तो कहा गीता को मानते हो, कहा हां, तो गीता में आप ये मानते हो काम क्रोध लोभ जो है वो नरक के द्वार है, हां। तो बाबा ने उनसे पूछा कि आप पवित्र रहते हो, तो कहा हां। तो कब से रहते हो, तो कहा 2 साल से पवित्र रहता हूं। माना 56 वर्ष की आयु के थे, 2 साल पहले से ही माना 54 वर्ष की आयु में उन्होंने पवित्र रहना शुरू किया था। और बाबा ने कहा अच्छा 2 साल से ही पवित्र रहते हो, कितने बच्चों के माँ बाप हैं, तो कहा हमारे 5 बच्चे हैं और 5ों की शादी हो गई और 5ों के घर में बच्चे हैं, और फिर ऐसे बड़े परिवार के हम हैं, और 54 वर्ष की उम्र के बाद में करता हूं पवित्र रहता हूं मैं और मेरी युगल। तो फिर बाबा ने उनसे पूछा कि ये आप जो ज्ञानेश्वरी गीता जो है उसमें ये लिखा हुआ है काम क्रोध और लोभ जो है वो नरक के द्वार है, उसका उसके बारे में आप सिखाते हो, कहा मैं उसके बारे में प्रवचन करता हूं सबको बताता हूं काम क्रोध और लोभ जो है वो नरक के द्वार है, परंतु आपके फॉलोअर्स को आपके जो शिष्य जो है बहुत बड़े पंडित विद्वान थे महाराष्ट्र के अंदर उनको आप फॉलो करने के लिए कहते हो कि आपको पवित्र रहना चाहिए, कहा वो तो नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहते हो, तो कहा मेरा कौन सुनेगा कौन मानेगा, तो उसने तो यही कहा कि मेरे बेटे को भी मेरी बच्ची को भी मैं कहूँ कि तुम पवित्र रहो तो वो नहीं रहेगी, तो बाहर वाले तो कहां से रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि आपको मालूम है यह विश्वविद्यालय में तो फर्स्ट स्टेज, जिस फर्स्ट स्टेज को आप सब हम सब जो यहां बैठे हुए हैं उन्होंने क्रॉस किया हुआ है पवित्र रहने का। बाबा ने कहा कि वो तो हमारे विश्वविद्यालय में तो फर्स्ट स्टेज है पवित्र रहने के, और पवित्र रह करके जो प्रतिज्ञा करते हैं वही हमारे बाबा के बच्चे बन सकते हैं। तो उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, मैंने रमेश भाई के साथ 7 दिन का कोर्स किया हुआ है, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये कार्य जो है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी चाहे कोई भी आयु हो पवित्र रह सकते हैं, और पवित्र रहने की शक्ति देने का कार्य एक परमात्मा ही कर सकते हैं, ये कार्य गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को पवित्र बनाने की या तो पवित्र रहने की शक्ति मनुष्य जो है वो मनुष्य को नहीं दे सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं, और मैं इसलिए आज यहां आया हुआ हूं आपसे मिलने के लिए, बाबा को कहा कि आप इतनी बड़ी पवित्रता की क्रांति फैलाने के लिए निमित्त बने हुए हैं इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। तो आप देखिए दुनिया के अंदर भी हमारा ये पवित्रता का बंधन घर ग्रस्त में रहते हुए, आप समझ लीजिए यहां इतने आप सब बैठे हुए हैं, आप सबके जीवन की आश यही है, आपके युगल सहित आप यहां आए हुए हो, आप सब यहां ऐसे ही बैठे हुए जिन्हों को पवित्र रहने की बात है। अगर बाबा का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता, आप सब जितने भी भाई यहां बैठे हुए हैं वो सब सन्यासी बन गए होते हैं, और आपकी युगले क्या करती, सोचिए क्या होता। जो जिस आज प्रलौकिक कारोबार के अंदर आप रहे हुए हैं और जिस प्रकार से आपका अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते, उसके बदले में क्या होता। एक खाली कल्पना चित्र आपके मानसिक मानस पटल के ऊपर आप रखिए, तब मालूम पड़ेगा कि बाबा का ये सिद्धांत जो है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए डिवाइन फैमिली के सदस्य बनकर के कारोबार करना, ये कितना श्रेष्ठ सिद्धांत है। जैसे वीएस पागे ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर के पवित्र जीवन व्यतीत कराने की या करने की शक्ति एक परमात्मा ही दे सकता है। तो ऐसी परमात्मा की शक्ति के बल के आधार पर हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र रहकर के इस डिवाइन फैमिली के सदस्य बने हुए। ये जो डिवाइन फैमिली का जो कंसेप्ट जो है ना, ये कानूनी दृष्टिकोण से भी कानून ने भी मंजूर किया हुआ है, ईश्वरीय कानून ने भी मंजूर किया है, तो लौकिक दुनिया के भी कानून ने मंजूर किया है। आप सब कहेंगे कि ईश्वरीय कानून के हम कैसे इन्होंने मंजूर किया हुआ है। आप सब जानते हैं हम सबके कितने जन्म हैं, 84 जन्म है, बराबर है। आप सबने कभी हिसाब किया है 84 कैसे होता है? सतयुग के 8, फिर त्रेतायुग के 12, माना कितने हुए, 20 हुए, और द्वापर और कलयुग के मिलकर 63 जन्म मिलकर के कितने होते हैं, 83, बराबर है, 83 होता है, और गायन होता है 84 का, तो वो एक जन्म कौन सा, वो एक जन्म है यह संगम युग का जो जन्म है, 83वें शरीर में रहते हुए 84वां जन्म होता है, जिसको शास्त्रों में कल्पना बताई हुई है द्विज, दोबारा जन्म लेना। आपको मालूम है कि यहाँ जो ब्राह्मण धर्म के लौकिक दुनिया के हिसाब से बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा द्विज माना जनोई, या जो जानवी पहनते हैं उसके बाद जनोई का संस्कार होता है, तो तब उसको द्विज कहते हैं, माना दोबारा जन्म हुआ। वो दोबारा जन्म का सिद्धांत जो है शास्त्रों में जो आया हुआ है, हमारे यहाँ की कल्पना के आधार पर है, सिद्धांत के आधार पर है कि हम बाबा के बनने से हमारा ये 84वां जन्म होता है, जिस जन्म के अंदर 83वां जन्म का शरीर होते हुए 83वां जन्म के हिसाब से हम सबके माँ बाप 83वें जन्म के हिसाब से अलग अलग है, परंतु 84वें जन्म के हिसाब से हमारा जो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस 84वें जन्म की अर्थात ब्राह्मण जन्म की अर्थात डिवाइन फैमिली का कंसेप्ट का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है, जिसके अंदर हम सब ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता, आप सब बोलते हो ना हमारे तीन पिता है, परलौकिक पिता, अलौकिक पिता और लौकिक पिता। तो अलौकिक पिता कब ब्रह्मा बाबा बनते हैं, और मातेश्वरी भी हमारी अलौकिक माता कब बनती है, कि जब हम 84वें जन्म के अंदर अपने आप को इस डिवाइन फैमिली के सदस्य के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं, और अपने आप को इसके कारण अपने नाम के आगे या पीछे ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी टाइटल का उपयोग करने के अधिकारी बनते हैं। जब हम ब्रह्मा कुमार बन क्या कहलाते हैं अपने आप को, तब क्या होता है, हमारा 84वां जन्म अर्थात एक डिवाइन फैमिली का कंसेप्ट और उसके हम सदस्य है। इस डिवाइन फैमिली ऐसा फैमिली है जिसके अंदर हम सबके माँ बाप एक ही है, हमारे हम सबका अलौकिक पिता है ब्रह्मा बाबा, और अलौकिक मातेश्वरी है, माता जी है हमारी, मातेश्वरी सरस्वती है वो है, और इसके आधार पर ही हमारा 84वां जन्म इस 83वें जन्म में होते हुए भी होता है। कई बहन भाइयों को ये 84वां जन्म का कंसेप्ट अभी तक पूरा समझ में नहीं आता है, पर मैंने आपको बताया ना ये कानून के दृष्टिकोण से भी इस हमारा ये 84वें जन्म को और अलौकिक जन्म को डिवाइन फैमिली को भी कानून ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। कारण के क्या है, मैं आपको कानून की बात बताऊं, राजस्थान के अंदर राजस्थान आप जानते हैं बाबा का एक सिद्धांत है कि कौरव गवर्नमेंट के पास है उसके पास हमारी पांडव गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। मालूम होगा जो पुराने भाई बहन है वो ब्रह्मा बाबा के टाइम पर यह कंसेप्ट बहुत प्रसिद्ध था, अब तो इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है। तो ब्रह्मा बाबा के टाइम पर खास चर्चा होती थी कि पांडव गवर्नमेंट जो है वो कौरव गवर्नमेंट के आगे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी। तो यहां किस में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी, वो है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में चैरिटी के रूप में रजिस्टर्ड कराने की बात थी, तो हम लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं कराया। यहां का राजस्थान का असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर के सामने भी हमने ये बात रखी कि हमारा ये दैवी परिवार है और इस दैवी परिवार के नाते से हम कारोबार करते हैं, हमारी ये डिवाइन फैमिली है, डिवाइन यूनिटी है। तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि क्या है राजस्थान का जो कानून है उसके अंतर्गत उसी संस्था को राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जो संस्था ये दो प्रकार का काम करती होगी, एक सरकार से ग्रांट लेती होगी, सरकार से ग्रांट लेती होगी, और दूसरा जो पब्लिक से डोनेशन लेती होगी। तो जनता से, लोगों से, पब्लिक से डोनेशन लेती होगी। तो हमारे लिए यही प्रश्न आया कि आपकी संस्था कैसे चलती है। तो हमने उनके सामने रखा कि हमारा तो ये डिवाइन फैमिली है, आप यहां सभी घर गृहस्थ में बैठे हुए हैं, आप अपने घर बार को चलाने के लिए आपने समझो भाई 90% तो भाई कमाते होंगे और बहनें घर बार चलाती होंगी, तो आपने अपने घर को चलाने के लिए आपके युगल को पैसा दिया, ये क्या दान दिया? कोई ऐसा समझता है? या चाहे आपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस दिया, तो क्या आपने अपने बच्चों की फीस जो दी वो बेटे को या बेटी को दान दिया, या उसके कपड़े लाने के लिए खर्च किया वो क्या दान हुआ? वो दान नहीं हुआ, परंतु आप एक फैमिली के सदस्य है और फैमिली के बड़े होने के नाते से आपकी जिम्मेदारी है कि आपका फैमिली का शरीर निर्वाह अर्थ जो भी खर्च करना पड़े वो खर्च आप करते ही हो, इसलिए वो दान नहीं है। बराबर है? ये कोई ऐसा समझता है कि अपनी युगल को खर्च कर घर बार घर चलाने के लिए खर्चा दिया वो दान में दिया? कोई ऐसा समझता है? या कोई माता ऐसा समझती है कि जब आपके पति देव ने आपको पैसा दिया घर चलाने के लिए 5,000 रुपया तो आपको दान में मिला 5,000 रुपया? वो भावना कभी होती है न पति में होती है न पत्नी में होती है। बराबर है? मैं कोई ऐसा मानता हो कि नहीं मेरा कहना गलत है और पति देता है तो दान, या पत्नी को भी जो मिलता है पत्नी समझती है मुझे दान मिला, तो ये हाथ खड़ा करे? किसी के अंदर भावना ये नहीं है। तो इस प्रकार से हमने भी उनके अंदर सामने में यही कहा कि ये अभी दैवी परिवार है, इस दैवी परिवार के अंदर उसको चलाने के लिए जो भी बहन भाई देते हैं वो परिवार को जो दिया परिवार चलाने के लिए, परिवार का कारोबार करने के लिए, वो दान नहीं है। आपने मकान बनाना है, मकान लिया है परिवार को रहने के लिए, तो क्या वो दान हुआ? वो नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमने कहा कि सबका मिलजुल करके जो भी पैसा होता है उसके द्वारा हमारे सेंटरों के मकान खरीद करते हैं या यज्ञ का भी कारोबार चलता है उसी प्रकार से चलता है, तो इसलिए ये दान नहीं है। और ये डिवाइन फैमिली के रूप में, एक माता पिता के रूप में जो हमारा दैवी परिवार का कंसेप्ट है डिवाइन फैमिली का, उसके आधार पर ही हमारा कारोबार चलता है। तो इन्होंने असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने भी एग्जेम कर दिया कि बराबर है ये विश्वविद्यालय डिवाइन फैमिली के कंसेप्ट के आधार पर चलता है और इसलिए इसको राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के नीचे में अंतर्गत रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। आप समझिए एग्जेम्प्टेड किसको कहते हैं? मुक्त है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें उसके लिए रजिस्टर्ड कराना पड़े, तो इसके कारण हम एग्जेम्प्टेड है। हमारे कई बहन भाई समझते हैं कि अपना विश्वविद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है जिसके कारण वो इलीगल है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड नहीं होती है संस्था को। कई ऐसे कई वकील लोग भी ऐसा मानते हैं कि ये हमारी संस्था जो है अनरजिस्टर्ड है, इसलिए इलीगल है, परंतु ऐसा नहीं है। हम रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड है। आपके पास में विदेशियों के अंदर तो काफी इस बात की चर्चा होती थी कि हम अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हमारी संस्था इलीगल है, गैर कानूनी है, क्या है, क्या हमारा दैवी परिवार कानून के अंतर्गत, कानून के दृष्टिकोण से भी उसके दृष्टिकोण से भी हम है नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या है। तो हम एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड और इलीगल में बहुत फर्क है। आप अगर ट्रेन में जाते होंगे, आपके साथ अगर दो साल का बच्चा होगा, हाँ ट्रेन में तो आप आए होंगे, तो समझो आपके पास आपके साथ में दो साल का बच्चा है, आपने टिकट नहीं लिया हुआ है, दो साल के बच्चे की टिकट नहीं लिया हुआ है, और टीटी कहेगा कि इस बच्चे की टिकट, तो आप कहेंगे टिकट नहीं लिया है। तो क्या आपने दो साल के बच्चे की टिकट नहीं लिया है तो आपको दंड भरने के लिए टीटी मजबूर कर सकता है? अब सोचिए अपने आप को, क्यों नहीं करता है मजबूर, क्यों नहीं करता है? क्योंकि तीन साल से छोटे बच्चों को टिकट लेने के कानून से उसको एग्जेम्प्शन मिला हुआ है। आप समझ गए, तीन साल से छोटा बच्चा है, दो साल का बच्चा है, तो टीटी भी उसको कहेगा नहीं आपको पैसा भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, आप क्या कहेंगे, अरे दो साल का ही है और उसको एग्जेम्प्टेड है, तीन साल तक के बच्चे को टिकट नहीं लेनी पड़ती। आप समझे ये कंसेप्ट, एग्जेम्प्टेड किसको कहते हैं, दो साल के बच्चे को टिकट नहीं लेनी पड़ती है, कारण कानून ने उसको एग्जेम्प्शन दिया हुआ है। पहले तो बीच में तो दूसरे रेलवे मिनिस्टर ने तो मधु धनवटे जो थे तब तो पांच साल के बच्चों तक छुट्टी थी, चार साल का बच्चा भी होगा उसको छुट्टी थी, पांच साल के बच्चे तक छुट्टी थी, फिर सरकार ने कानून बदली कर दिया और तीन साल के बच्चे तक छुट्टी है। तो क्या हो गया, ये कंसेप्ट क्या हुआ, एग्जेम्प्शन का कंसेप्ट, ये दैवी परिवार भी कानून के दृष्टिकोण से उस कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने से एग्जेम्प्टेड है। इसलिए क्या हुए, हम इलीगल नहीं है। हमारे कई सीनियर सिटीजन भाई यहां बैठे हुए होंगे, ट्रेन में आते हैं, हाँ तो सीनियर सिटीजन को आप जानते हैं रेलवे में 30% डिस्काउंट मिलता है, 30% कम मिलता है, बहन या भाई जो भी होंगे तो 65 साल से ऊपर यहाँ सीनियर सिटीजन बन गए होंगे, आप टिकट में आप टिकट का रिजर्वेशन का फॉर्म भरते हो उसमें आपने लिखा कि मेरी आयु 68 की है, और बहन जी अपने आयु लिखी है मेरी आयु 66 है, और आपके पास प्रूफ होंगी आपके ये आयु का, तो क्या होगा, टिकट के अंदर उसमें ही रेलवे का जो है कंप्यूटर उसमें ही लिखा हुआ अंदर भरा हुआ है, इस प्रकार से कि जैसे आपकी आयु 68 लिखी हुई होंगी और आपको रिजर्वेशन मिलता होगा तो आपकी टिकट का रेट जो है उसमें से 30% डिस्काउंट या एग्जेम्प्शन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये जो 30% डिस्काउंट आपको मिला, इसके ऊपर टीटी कोई आपको दंड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको 30% का डिस्काउंट है, 30% का एग्जेम्प्शन है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये हमारा 84वां जन्म जो है, इस 84वें जन्म का कंसेप्ट जो है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अगर हम बराबर समझ ले तो क्या हो जाएगा। इसलिए आपको हमारे पास बॉम्बे में जस्टिस कृष्ण अय्यर आए हुए थे, तो जस्टिस कृष्ण अय्यर के पास उनके सब रिश्तेदार भी जो है साइंस सेंटर पर आए हुए थे मिलने के लिए। तो इन्होंने पूछा कि आपको ये विश्वविद्यालय, उनके रिश्तेदारों ने जस्टिस कृष्ण अय्यर से पूछा क्यों अच्छा लगता है, तो इन्होंने कहा कि इनकी एक रस्म बहुत अच्छी है। क्या हुआ, उसी टाइम पर दादी ब्रिजेंद्रा ने किसी को बहन को बताया कि मेरी लौकिक बहन जो है ना ऐसा ऐसा कर रही है, तो कृष्ण अय्यर ने वो सुना था, कहा देखो ये जो कह रही है ना कि मेरी लौकिक बहन, आप समझे, 84वें जन्म में रहते हुए जब 84वें जन्म के आधार पर कारोबार करना पड़ता है तब 83वें जन्म के संबंधों के बीच में और 84वें, आप दादी को ये नहीं कहेंगे हमारी अलौकिक दादी है, परंतु इतिहासिक जन्म के जो भी संबंध है, इन संबंध के आगे हम अपने आप को मोहजित, आप जानते हैं बाबा ने भी कहा हुआ है कि आपकी अंतिम परीक्षा में दो प्रश्न हो गए कि आप कहां तक नष्टो मोहा बने हुए हो और कहां तक स्मृति लब्ध्वा, अर्थात मैं आत्मा हूं इस स्मृति के अंदर अपने आप को टिका सकते हो। जो अर्जुन ने भी अंत में कहा हुआ है भगवान को कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम शरणम प्रपन्नम, तो मैं नष्टो मोहा हो गया हूं और मेरे को मेरी फिर से स्मृति आ गई है, मेरी क्या ड्यूटी है वो मैंने जान लिया है, इसलिए मैं अभी आप जो भी कहेंगे आप शिष्य, मैं आपका शिष्य बन गया, जो आप कहेंगे मैं वो करने लिए तैयार हूं। तो ये अंतिम हम सब के जीवन व्यवहार के अंतिम पेपर में यही आएगा, नष्टुमा किससे नष्टुमा, 83वें जन्म के जो भी हमारे संस्कार है, जो भी हमारे संबंध है, इन सभी संबंधों के ऊपर जीत पाने के लिए हमारे दृष्टि के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत है, और वो है शब्द ऐड करने का। जैसे हम अपने नाम के आगे कहते हो भाई, परिचय में भी देते हो कि ब्रह्मा कुमार रमेश, ब्रह्मा कुमार राधेश्याम, ब्रह्मा कुमार अरविंद भाई, जजू, ऐसे जो भी नाम होंगे हम ऐड करते हैं ब्रह्मा कुमार। उसी प्रकार से हमारे लौकिक व्यवहार के कारोबार के अंदर जस्टिस कृष्ण नायर ने कहा कि ये लोग गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप का व्यवहार जो है, जीवन व्यवहार जो है वो अलौकिक करते हैं, और इसलिए इन्होंने शब्द ऐड किया अलौकिक। तो ये जो इनका अलौकिक शब्द जो है ना, आप समझ गए, आप तो जो हिंदी जानने वाले समझ गए, वो कृष्ण नायर ने कहा ये वंडरफुल शब्द है अलौकिक। भाई ये मेरी अलौकिक बहन है, माना लौकिक अलौकिक इस प्रकार से जो है, लौकिक अलौकिक परलौकिक, इसमें अलौकिकता का जो है, चाहे ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहते हैं, इन सभी शब्दों के अंदर अलौकिकता का एक शब्द जो है, जैसे डिवाइन फैमिली का ही इम्पोर्टेंस है, इस प्रकार से अलौकिक जीवन व्यवहार और अलौकिक कारोबार करना ये हम सबकी एक पवित्र फर्ज है। और इसके ही कारण क्या हो जाता है कि हमारा ये डिवाइन फैमिली का कंसेप्ट जो है, दैवी परिवार, और इस दैवी परिवार के रूप में जो हम कार्य करते हैं, ये दुनिया में, सारी दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी सभ्यता, इधर भी ये कंसेप्ट नहीं है दैवी परिवार का, सब जगह पर बाकी सब है, परंतु ये परिवार दैवी परिवार के रूप में हम एक परिवार के सदस्य के रूप में कारोबार करते हैं, और हम सब अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में कारोबार करते हैं, ये नहीं है। ये बहुत विचित्र बात है, परंतु ये बहुत ही साइंटिफिकली लीगली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, और इसलिए इस सिद्धांत का जीवन में पालन करने का है, और इसके ही आधार पर बाबा ने भी कहा हुआ है, मैं आपको बताऊं 69 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो उसके बाद हमारे एक कार हमने बुक किया था कलकत्ते, और कलकत्ते से बॉम्बे में लेकर के आना था, हम रास्ते में कलकत्ते से बॉम्बे तक दिल्ली होकर के आते थे, तो रास्ते में जितने भी सेवा केंद्र थे उस सेवा केंद्रों पर हम जाते थे, जाने वाले थे। तो यहाँ पर मैं आबू में आया था बाबा से विदाई लेने के लिए, तो हमने बाबा को कहा कि बाबा हम इस प्रकार से परिवार सहित जाने वाले हैं कानपुर कलकत्ता, और कलकत्ते से पटना कानपुर दिल्ली होकर के इंदौर होकर के बॉम्बे आने वाले, तो जो भी हमको मिलेंगे सारे इस सफर के अंदर, एक डेढ़ मास की सफर होगी वाया बॉम्बे, कलकत्ते से दिल्ली और दिल्ली से फिर जयपुर होकर के हम आबू होकर के बॉम्बे आए, तो हमने कहा बाबा हम क्या सबको बतावे, क्या संदेश सबको देवे, तो बाबा ने कहा कि आप तो घर में रहते हो, गृहस्थ जीवन में रहते हो, तो आप जो भी जहां भी जाकर के मिलो सभी बच्चों को, तो सबको ये डिवाइन फैमिली क्या है, दैवी परिवार क्या है, आदर्श गृहस्थ जीवन और आदर्श गृहस्थ परिवार क्या है उसके बारे में बताना, और अपने सबको पूछो कि जो आप घर बार रहते हो तो खुश तो हो जाते हो, घर में रहते हैं हमको संन्यास नहीं करना पड़ेगा, पर जो घर में रहते हो, जो जिस गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, उसके जो मैंने असूल बनाए हुए हैं उस असूल के मुताबिक आप अपना जीवन व्यवहार करते हो, ऐसा सभी बच्चे जो भी मिले और खास करके जो गृहस्थी मिले, गृहस्थ जीवन के जो मिले उनसे पूछो। मैंने आदर्श गृहस्थ के लिए बताया है जीवन व्यवहार की जीवन शैली, 24 घंटा सबको है। तो बाबा ने कहा कि मैंने आदर्श गृहस्थ व्यवहार के लिए, गृहस्थ में रहते हुए पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके लिए मैंने बताया हुआ है, 8 घंटा जो है आप अपना लौकिक कारोबार जो भी है, शरीर का आराम करना, भोजन आदि कारोबार के लिए करो, 8 घंटा जो है अपनी लौकिक कमाई जो है जिसके आधार पर आप अपने दैवी परिवार, अपना लौकिक परिवार जो भी है उन सब की कमाई के लिए आप अपना कमाई का साधन के लिए 8 घंटा दो, और 8 घंटा जो है ईश्वरीय कमाई के लिए देना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप सभी बहन भाइयों से सवाल पूछना जो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं कि इसको मैंने आदर्श गृहस्थ व्यवहार, आप गृहस्थ तो व्यवहार में रहते हो, आपका लौकिक फैमिली के बदले डिवाइन फैमिली हो गया, परंतु क्या वो आदर्श डिवाइन फैमिली है? ये अपने दिल पर हाथ रख करके अपने लिए ये प्रश्न है कि 8-8 घंटे का जो बाबा ने समय का विभाजन किया, मैंने कहा बाबा ये तो इम्पॉसिबल है। आज की जमाने में महंगाई इतनी है कि जिस महंगाई के अंदर 8 घंटे की कमाई के आधार पर, 8 घंटे की कमाई के आधार पर घर का खर्चा निकल नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तेरी बात सही है, आप बच्चों जो बच्चे ऐसे आर्ग्यूमेंट करे कि क्या करे बाबा, आज की महंगाई के कारण खर्चा बहुत बढ़ गया है और 8 घंटे की लौकिक कमाई के आधार पर घर का व्यवहार नहीं हो सकता है, तो फिर घाटा कहाँ पड़ेगा? आप कम समय किसके लिए देंगे? 8 घंटा जो सोने करने का, खाने पीने का है, उसके तो आप कम करेंगे नहीं, तो आप कहाँ कम करेंगे? जो ईश्वरीय पुरुषार्थ के लिए जो समय देना चाहिए वो नहीं करेंगे। तो बाबा ने यही सवाल पूछा, इन बच्चों जो आप बच्चे ऐसे आर्ग्यूमेंट करें इनसे पूछो कि एक जन्म की कमाई के लिए भी 8 घंटे का पुरुषार्थ सब पर्याप्त नहीं है, तो आपको 63 जन्मों के लिए या 84 जन्मों के लिए या एक ही जन्म जितना भी आपका लक्ष्य हो उसके लिए क्या ये कम समय देंगे तो वो पर्याप्त है? उनसे पूछना, उनको जागरूक करना। वर्तमान की कमाई के प्रति लोगों की पूरे पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, पुरुषार्थ है, परंतु भविष्य की कमाई के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए इतना कर रहे हो? वो सभी बच्चों को जाकर के पूछना, वो है आदर्श गृहस्थ व्यवहार। आप सब यहां आए हुए हो, अपने आप से जो बाबा ने उस टाइम पर 69 में जो हमको सवाल पूछने के लिए कहा था, मैं वही सवाल आज आप सबके सम्मुख में पूछ रहा हूं कि आप सबका भी इस प्रकार से आदर्श गृहस्थ व्यवहार है, आदर्श डिवाइन फैमिली है, जिसके अंदर आप 8 घंटा लौकिक कारोबार, 8 घंटा शरीर के कारोबार के लिए और 8 घंटा ईश्वरीय कारोबार के लिए देते हो। अगर वो नहीं देते हो तो ये अगले आने वाले भविष्य के लिए जितना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना हो इतना बना सकेंगे? अपने आप से पूछिए। इस वर्ष का 18 जनवरी की जो साकार मुरली जो रिपीट हुई थी, मैंने बहुत ध्यान से 2-3 बार पढ़ी और उसके ऊपर क्लास भी कराया है। उसके अंदर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात हम गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले के लिए कही है। बाबा ने कहा है उसमें कि बच्चे जो है ना अभी भी बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं, और बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए जो कमाई करनी चाहिए उस कमाई के लिए जितना ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, इतना नहीं देते हैं। अगर बाबा ने उसमें कहा हुआ है, अगर इस जन्म की आपकी लौकिक कारोबार के आधार पर आपने अपने लौकिक कारोबार, लौकिक जीवन, लौकिक परिवार, गृहस्थ व्यवहार जो है उसके लिए जितना धन पर्याप्त करना होना चाहिए इतना अगर हो गया होगा, तो फिर ज्यादा धन की प्राप्ति के पीछे मेहनत करके आने वाले घाटा किसको आप करते हो? आने वाले भविष्य के लिए जो धन कमाना चाहिए उसके लिए नहीं करते हो। बच्चों का भविष्य के जीवन के लिए कमाई करने के लिए जितना अटेंशन होना चाहिए इतना नहीं होता है, और घाटा इसलिए आने वाले भविष्य के लिए जो कमाई करनी चाहिए उस कमाई की प्राप्ति के लिए अटेंशन जो रखना चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। और इसलिए जो साधन संपन्न है, संस्कृत में दो श्लोक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूं थोड़ा, भर्तृहरि ने कहा हुआ है, एक तो गरीबी के लिए कहा हुआ है कि वो भो दारिद्र्यम त्वत् प्रसादा सिद्धो हम, हे गरीबी मैं तेरे के कारण मैं सिद्ध बन गया हूं, मैं दुनिया को देखता हूं परंतु दुनिया मुझे नहीं देखती है, एक ये कहा हुआ है। और दूसरा कहा है कार्पण्य, मतलब जो कंजूस जो है ना वो बड़े में बड़ा दानी है, क्योंकि क्या करता है वो इकट्ठा जो करता है वो कितना कुछ किसके लिए इकट्ठा कर, वो अपने लौकिक परिवार के लिए ही इकट्ठा करता रहता है। हम भी ऐसे ही अगर करें लौकिक परिवार के लिए करें क्या करेंगे। हमारी मातेश्वरी जो है ना हमेशा ही कहती थी वो श्लोक, हाँ किसकी चोर लूट जाए, किसी का आग जलाए, किसकी राजा खाए, ऐसे जो भी बातें जो है वो सबके लिए है। उन बातों को देखते हुए अगर हम भी अपने भविष्य की कमाई के बदले में वर्तमान की कमाई के प्रति ही अपना समय बर्बाद करें, जरूरी है तो आप समय दे दो, जरूरी है तो चलाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, आपकी मजबूरी है। पर तो जिनों को ऐसी मजबूरी नहीं है वो फिर ऐसी बातों के पीछे अपने समय बर्बाद करते हैं तो क्या होता है, घाटा कहां पर पड़ता है। हमें इस एक जन्म में आने वाले भविष्य की कमाई करनी है, और वो भी जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो काम करना पड़ता है तो कैसे करेंगे, ये सब सोचना है। और उसके आधार पर हमें अपना जो लौकिक कारोबार जो है उसको सेट करना है, हम जानते हैं कैसे किया जाए। इसके बारे में भी बाबा ने युक्ति बताई हुई है कि आपको जो भी आपका पुरुषार्थ में तीव्रता लानी हो ना तो क्या कर लीजिए। मुझे तो बाबा ने वो बताया, बाबा ने कहा कि बच्चे तेरा जो लौकिक कारोबार जो है तूने क्या किया। मैंने कहा बाबा जो बताओ, आपने जो कहा हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा तूने एक बहुत अच्छी युक्ति किया, तुम्हारा जो लौकिक कारोबार है ना उसने तुमने अलौकिक कर दिया, और उस अलौकिक कारोबार के आधार पर ईश्वरीय सेवा में तुमको वो लौकिक कारोबार को जो आपने अलौकिक किया है उसके आधार पर तुमको ईश्वरीय सेवा करने का कारोबार करने का सहज रास्ता मिल गया है। इसी हिसाब से सभी बच्चों को भी कहो कि आपको ईश्वरीय कारोबार के अंदर सहज पुरुषार्थ करना हो तो अपना जो भी लौकिक कारोबार है, लौकिक कारोबार के दिख लिए कई बार आप देखेंगे मधुबन में आप आते हो पांच दिन रहने के लिए ही कहने आता है, तो हमारी माताएं जो है उसको कहते जितना दिन चाहो इतना दिन रहो, क्यों क्या किचन के अंदर रोटी बेलने की जरूरत पड़ती है, रोटी बेलने के लिए जो माता आती है उसको बोले दो मास या चार मास रहे पूरी छुट्टी मिल गई, कारण कि उनके पास उनका जो लौकिक कारोबार जो है रोटी बेलने का वो लौकिक कारोबार के आधार पर वो अलौकिक पुरुषार्थ में सहज रूप से यहाँ पर दो मास चार मास छह मास भी रह सकती है। और जिनके पास ये रोटी बेलने का कारोबार नहीं है, हम भाइयों में कईयों को नहीं आता होगा, इनको पांच दिन होगा और उसके बाद राम श्लोक कहेंगे भाई साहब आपका पांच दिन पूरा हो गया चलो जाओ, आप जाएंगे तो फिर दूसरे लोग आकर के रहेंगे आप सबको, तो राम श्लोक जो कहेंगे जाओ, पर फिर माताओं को कहेंगे आप रहो रहो, और किचन वाले भी कहेंगे आप रहो जितना दिन ज्यादा रहो इतना है, क्योंकि सबको आपके पुरुषार्थ के कारण गरम गरम रोटी मिल सकती है। तो देखिए माताओं के पास ये हुनर है कि उनके पास अपना अलौकिक जो लौकिक कारोबार को उन्होंने अलौकिक कर दिया, इसलिए तीन मास चार मास भी रहे तो भी हर्जा नहीं है, वो अनवांटेड गेस्ट नहीं है। और आप पांच दिन के बाद आपको कहेंगे भाई आप जाओ घर पे तो दूसरे आएंगे दूसरे रहेंगे, बराबर है ऐसा ही होता है ना। तो इस प्रकार से आप अपने लौकिक कारोबार जो भी आपका पास जो भी हुनर है जो भी आप जानते हो उसको आप अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, पर वो नहीं होता है। हमारे कई भाई है ना, एक बार एक अधर कुमारों का क्लास था, मैंने आपको बताया ना मेरा जो अक्कल जो है ना वो टेढ़ी चलती है, बुद्धि टेढ़ी चलती है, तो मैंने अधर कुमारों के क्लास में कहा कि हम हर वर्ष यहाँ पर मधुबन, आपको सब मैंने सबको पूछा कि आपको मधुबन में यहाँ ज्यादा समय रहने के लिए चांस मिले तो आप रहने के लिए तैयार हो, तो कहा कि हाँ, सबने हाथ खड़ा किया। परंतु हमने कहा तो फिर जब हम मधुबन से पूछ कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे सेवाधारी भाई बहनों की जरूरत है, तो ऐसे भाई में आप अपना लिस्ट में नाम क्यों नहीं भेजते हो, तो इन्होंने दो बात की कमी बताई। कहा कि हम आवे तो सही, हमको कौन सा ड्यूटी मिलेंगी क्या मालूम। परंतु यज्ञ सेवा ऐसी है, इसमें जो भी आपको सेवा मिले वो अलौकिक सेवा में बहुत ही आनंद होगा। हमारे बॉम्बे के एक अनन्य भाई थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दुकान में बैठते थे, कारोबार करते थे। उसको यहाँ पर छुट्टी मिली, अब उसने एक मास की छुट्टी लेकर के यहाँ पर सेवा के लिए आ गए। तो आए थे, इनको पहरे की ड्यूटी मिली थी पांडव भवन में, सुबह से शाम तक पहरे पर रहने का, कोई भी आवे उनसे मिलना कि कौन है क्या है, इस प्रकार से मिलने जुलने का। तो मैंने उनको कहा, अरे आपको पहरे की ड्यूटी मिली, आप तो इतने बड़े व्यापारी है। कहा, रमेश भाई ये पहरे की ड्यूटी बहुत अच्छी है मेरे लिए, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। क्या हो गया कि बॉम्बे में तो बैठा था तो सारा दिन बैठे बैठे क्या होता, गैस होता था, हजार चीजों की बीमारियां होती थी, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। यहाँ तो सारा दिन जो है ना मैं घूमता हूँ, कोई आया तो किचन में लेके जाता हूँ, इधर जाता हूँ इधर जाता हूँ, सारा दिन मैं पैदल करता रहता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती है और मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। मैंने कहा, आपको ये बुरा नहीं लगता है कि आपको पहरे की ड्यूटी मिली। कहा, नहीं नहीं इनसे अच्छी और कोई ड्यूटी ही नहीं है। तो देखिए यज्ञ सेवा ऐसी है, जिस सेवा के अंदर जो भी मिले बाबा, जो भी हम बच्चों को यहाँ निमित्त बना करके करें। और दूसरा, सबने कईयों ने कहा कि हमने, मैंने पूछा छह मास की आप जानते हैं नौकरी करने वालों की ड्यूटी, मैं लीव एक्यूमुलेशन करने की छुट्टी मिलती है। मैंने कहा छह मास के एक्यूमुलेट करने वाले जो है वो हाथ खड़ा करो, तो कईयों ने हाथ खड़ा किया कि छह मास की ड्यूटी मतलब लीव रखी हुई है। तो मैंने कहा छह मास की ड्यूटी है, एक्यूमुलेट की है, तो उसको सफल क्यों नहीं करते हो, धन को सफल नहीं करते हो, बाकी सब तो आपकी जो ड्यूटी मिली हुई है, छह मास की लीव मिली है, उसको सफल करो। कहा, कभी हम बीमार पड़ जाए तो क्या होगा, इसलिए ऐसे आयुर्वेद के लिए रखी हुई है। तो मैंने उनको बताया कि बाबा ने एक अव्यक्त मुलाकात में एक पार्टी को कहा है, आयुर्वेद के लिए कोई भी चीज आप रख देंगे ना, तो जितनी मैं होशियार हूं ना, इतनी ही माया बच्ची मेरी है ना, वो भी होशियार है, उसको मालूम है कि इसने आयुर्वेद के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए उसके पास बीमारी ज्यादा जाती है और इसलिए बीमार आप ज्यादा पड़ेंगे। आप उनको सफल कर दो तो क्या होगा, न रहेगा बांस, न रहेंगे बंसरी, कुछ नहीं होगा, माया को भी आने का चांस नहीं मिलेगा। हम जीवन व्यवहार ऐसा करें हमारा गृहस्थ व्यवहार का, कि हमारे जीवन व्यवहार के अंदर हमारा किल्ला, हमारे जीवन व्यवहार का किल्ला इतना मजबूत होना चाहिए कि माया को कहां से भी अंदर आने की मार्जिन न मिले। माया कहां से आती है मालूम है, शास्त्र आप लोगों ने पढ़े होंगे, कलयुग कैसे प्रवेश हुआ इस सृष्टि में मालूम है, माया कैसे, कलयुग कैसे प्रवेश हुआ, कलयुग की सृष्टि में आने का था, 3 साल तक घूमता रहा कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो गलती करे और मैं उसके तन में प्रवेश कर दूं और मेरा राज्य कारोबार मैं शुरू कर दूं। 3 साल तक कुछ नहीं कर सका, आखिर में एक दिन जो है नल राजा, आपने नल दमयंती का आख्यान पढ़ा हुआ होगा, महाभारत में आता है नल दमयंती का, तो नल दमयंती का नल राजा जो है वो नल राजा बाथरूम जाकर के हाथ धोना चाहिए, वो बाथरूम जाकर के यूरिन पास करके हाथ नहीं धोया और कलयुग ने तुरंत उसको अंदर प्रवेश कर दिया। माना कि हमारी छोटी सी भी कोई भी गलती होगी ना, उस गलती को देख करके उस रास्ते से माया हमारे जीवन में आ सकती है। और इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, आसक्ति, आसक्ति की डेफिनेशन बाबा ने बहुत सुंदर दिया हुआ है कि आसक्ति से माया आ सकती है, आसक्ति से माया आ सकती है। तो ऐसी कोई भी प्रकार की अगर हमारे जीवन में आसक्ति रह गई तो क्या होगा, याद कर लो समझ लो कि हमने माया को हमारे जीवन में आने की उसके लिए गेट खुला रखा है। तो इसलिए मेरे कहने का भाव यही है इस देवी परिवार की परिभाषा के रूप में कि ऐसा हम कारोबार करें कि जो कारोबार सारी दुनिया में और कई धर्म में और कोई भाषा में और कोई संस्कृति में कल्चर में किधर भी नहीं है, ऐसी जो एक कंसेप्ट है डिवाइन फैमिली का, इस कंसेप्ट के आधार पर उसके लायक हमारा जीवन व्यवहार हो और हम आदर्श गृहस्थ व्यवहार ऐसा करें ताकि हमारा भी जीवन श्रेष्ठ हो और हम जिनों के भी संपर्क में आवे इन सबको हम कहें कि आप भी अपना ऐसा जीवन व्यवहार करो। बहुत कितना आसान पुरुषार्थ है, कितना आसान पुरुषार्थ है आपको मालूम है? पांडव गीता जैसे पांडव गीता है ऐसे ही राम गीता है, रामायण के अंदर राम गीता है जिसमें राम और वशिष्ठ के बीच में, जैसे यहाँ अर्जुन और कृष्ण के बीच में ऐसे राम और वशिष्ठ के बीच में, उसमें इन्होंने पूछा हुआ है अर्जुन ने कि कितने जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर हमको मुक्ति मिल सकती है और जीवन मुक्ति मिल सकती है। तो वशिष्ठ ने उसके अंदर बताया हुआ है कि 5 जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर आपको मुक्ति मिल सकती है और उसके बाद 2 जन्म माना 7 जन्मों के आधार पर जीवन मुक्ति मिल सकती है। ऐसी सिद्धांत की बातें रामगीता में लिखी हुई और हमारे ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधार पर हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा ने आदर्श गृहस्थ व्यवहार सिद्ध करके दिखाया। 68 में बाबा के मतलब बाबा के अंदर जो प्रवेशता हुई 36 के अंदर और 68 के अंदर 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर विश्व के प्रथम सर्वगुण संपन्न और 100% परफेक्ट जीवन व्यवहार करके बिफोर टाइम अपना जीवन को सफल कर करके बाबा के राइट हैंड बन करके बैठ गए ऊपर में बाबा के साथ कारोबार के लिए। तो हमें भी जब बाबा को कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो इस प्रकार से हम ब्रह्मा बाबा ने भी अपना आदर्श गृहस्थ व्यवहार देखिए। हमेशा मुझे कोई पूछता है कि इस यज्ञ में सबसे बड़े में बड़ा त्याग किसका होगा, मैं हमेशा ही कहता हूं कि ब्रह्मा बाबा की जो युगल जो है यशोदा माता है ना उसका सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और महान में महान त्याग है। क्यों? क्योंकि कल तक जिस पति को पति परमेश्वर के रूप में ब्रह्मा बाबा को पति के रूप में व्यवहार किया जीवन व्यतीत किया उसको कल आज से मतलब उनके अंदर प्रवेशता हो गए उसके बाद उनको अलौकिक पिता समझ करके उनका कारोबार करना और उस प्रकार से जीवन व्यवहार सिद्ध करना और अपना अहंकार को दबाना कितनी बड़ी बात है। आपको मालूम है यशोदा माता ने अपने जीवन व्यवहार को और अपने अंदर का ईगो को नष्ट करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने सब ड्यूटी बांट रहे थे, दैवी परिवार बन गया उसके बाद, तो यशोदा माता को पहले पूछा तुम बताओ तुमको क्या ड्यूटी चाहिए। देखिए कितना बड़ा त्याग यशोदा माता का, जिस घर की ब्रह्मा बाबा की लौकिक रूप में अर्धांगिनी होते हुए भी हर कार्य के अंदर 50% अधिकार होते हुए भी उसने कहा कि बाबा मुझे झाड़ू पोता लगाने की ड्यूटी दो। क्यों झाड़ू पोता लगाने के लिए? झाड़ू पोता लगाने में तो नौकर आदि सबको ही होता था, कभी उसने हाथ में कुछ भी नहीं उठाया था, उसने झाड़ू पोता था कि झाड़ू पोता लगाने से जो मैं इस घर की मालिकन थी उस मालिकन पने का अहंकार और अभिमान जो है वो मेरा छूट जाए और उस अभिमान से मुक्त होने के लिए मैं ये ड्यूटी स्व इच्छा से उठा रही हूं। आप बताइए, आप यहां इतनी बहने बैठी हुई है, आपके परिवार के अंदर इस प्रकार की आपको ऑफर हो, आपके पति देव आपको पूछे तो आपके झाड़ू पोता लगाने की ड्यूटी उठाएंगे? अपने आप से पूछिए। कितनी संपत्ति, जिस ब्रह्मा बाबा की संपत्ति के आधार पर यह यज्ञ 37 से 652 तक 16 साल तक चल सका, उस संपत्ति के मालिक की युगल होते हुए भी अपने आप को इतना सुंदर अपना पद का अभिमान का त्याग करके घर बार के अंदर घर में ही कल तक जिस घर की साम्राज्ञी थी आज उस घर की झाड़ू पोता लगाने वाली ड्यूटी संभाल लिया। कितना बड़ा त्याग है। ऐसे त्याग के आधार पर ही यह विश्वविद्यालय चलता है, ऐसे त्याग के आधार पर ही हमारा आदर्श गृहस्थ व्यवहार जो है डिवाइन फैमिली जो है उसको हम विश्व के सामने प्रसिद्ध कर सकेंगे। बातें तो बहुत है परंतु हमको कहा गया है 6:30 बजे पूरा ही करने का है, इसलिए मैं आपके सामने इतने ही बात रख सकता हूँ कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मामकी युगल जशोदा माता ने जो है जीवन व्यवहार श्रेष्ठ गृहस्थ व्यवहार करके दिखाया और इस दैवी परिवार की स्थापना की और उस दैवी परिवार की स्थापना करके कारोबार किया, कितना सुंदर कारोबार इन्होंने किया। जब माता उनके बाबा की जुगल बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, मैं मिलने के लिए गया, उनको बहुत पेन था, उनको पेट में कैंसर और अल्सर था, बहुत कुछ था, फिर भी उनके रमेश ये टोली खा, ये खा, वो खा। मैंने कहा माता जी आप तो बीमार हैं, आप अपने कहा बीमार तो बीमार शरीर का काम करे, मैं तो तुम आया है तो तुम्हारी खातरी करती हूँ। देखिए इस प्रकार से इन्होंने कहा और कभी भी इन्होंने अपने अहंकार के आधार पर अनितर मातेश्वरी जो है, हाँ जो मातेश्वरी मम्मा तो छोटी थी 18-20 साल की थी, उनको मातेश्वरी का पद दे दे और उनके हाथ में चाबी दे दे, सासू जो होती है बहू के हाथ में चाबी देने के पहले उसका कितना हृदय विदीर्ण होता है मैंने देखा हुआ है। वो मातेश्वरी को छोटे 18 साल की बच्ची के हाथ में यज्ञ कारोबार की चाबी दे दे और अपने आप को झाड़ू पोता लगाने की ड्यूटी संभाल ले, त्याग से, बाबा के कहने से नहीं, मजबूरी से नहीं, स्व इच्छा से, कि इसके आधार पर मेरा जो भी है अभिमान जो है वो मेरा खत्म हो जाए, चूर चूर हो जाए। तो ऐसा कारोबार हम भी करें कि इसके आधार पर हमारा ये दैवी परिवार का जो कंसेप्ट है उसको दुनिया के सामने हम प्रसिद्ध करें, और ये प्रसिद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस जिम्मेदारी को समझ करके हम जब अपने घरों में वापस जाएं तब जाकर के यही सबको कहना कि हम हमारा आदर्श गृहस्थ व्यवहार है उसको दुनिया के सामने प्रसिद्ध करने का सिद्धांत और उसका जो भी कहे निश्चय वो लेकर के आए हुए हैं। ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा ये जो भी है, आपका यहाँ आना जो भी है, भट्टी का कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाएगा। ओम शांति।
सुखी प्रजा है सारी, सुखी
सुखी है रानी, सुखी प्रजा है सारी।